ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहो। सप्तम तस्य भगवान रामचंद्र तथा उनकी भाइयों का अनुचरितं दिव्य कार्यकलाप। राजन हे राजन हे राजा महाराज परीक्षित ऋषि भी ऋषियों द्वारा तत्वदर्शी भी परम सत्य को जानने वाले श्रुतम सुना गया ही निसंदेह वर्णितम सुंदर ढंग से वर्णित भूरी अनेक तो या तुम्हारे द्वारा सीता पते सीता के पति भगवान रामचंद्र के मोहो बारंबार अनुवाद। हे राजा परीक्षित भगवान रामचंद्र की दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य की दर्शन किया है। क्योंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतः मैं इन कार्यकलाप का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। तात्पर्य आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने का स्वांग करते हैं अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का कुप्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति हैं। किंतु जो विद्वान है वो आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वो ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो परम सत्य के जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे। भगवत गीता 4:34 में भगवान उपदेश देते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, विनीत होकर उससे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। सर्वसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किए हैं। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान की कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतः कहने को तो अनेक तथा कथित रामायण है, किंतु उनमें से कोई तो यथार्थ रूप में प्रामाणिक नहीं है। कभी कभी भगवान रामचंद्र की कार्यकलाप का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, अपने भगवान रामचंद्र की कार्यकलाप के विषय में पहले से सुन रखा है, अतः स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाओं या रामायण थी और अब भी अनेक है, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए। ज्ञानिनाश तत्वदर्शिनः, ऐसे तथा कथित पंडितों की किताबों को नहीं जो मात्र डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। ऋषि भी तत्वदर्शी भी। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहत ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोक में सार रूप में प्रस्तुत किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीजुता पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानितं सं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी दीनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यते सत्तारिणे गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो इसे मिस्कन में ज्यादातर भगवान राम की कथा को इतना विस्तार से चर्चा नहीं करते हैं, तो लोग भी बहुत समय से आक्षेप करते हैं कि स्कंद वाले तो सिर्फ कृष्ण को मानते हैं, है ना, राम जी की बातें ही नहीं करते हैं, तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही बोलते हैं। तो वास्तविक इस प्रकार लोगों के जो मत हैं वो बहुत संकीर्ण मत हैं। वास्तविक हम कृष्ण को भी मानते हैं और राम को भी मानते हैं। तो कुछ ऐसे भक्तों के बीच में आपस में ऐसे मतभेद हुआ था कि आप लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम नाम के उच्चारण करते हैं, कौन से राम है, के बलराम है ना, परशुराम है ना, दशरथ नंदन राम है। तो फिर प्रभुपाद के पास गए, तो प्रभुपाद बोले ये सभी मत ठीक है, चैतन्य चरितामृत की तात्पर्य लिखे, क्योंकि भगवान का अनेक रूप है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऐसे ऐसे अनेक रूप में कौन है, रामादि मूर्तिसु कला नियमेन तिष्ठा नाना अवतार अकरोत् भुवनेषु किन्तु। तो इसी प्रकार मेरे अनेक अवतार हैं और मैं लीला करने के लिए संसार में उस रूप में प्रकट करता हूं। तो फिर कुछ लोगों का ऐसे कहना कि भगवान के इस प्रकार जो अवतार हैं बहुत अच्छा है, गॉड इज गुड, भगवान की इस प्रकार अनेक अवतार लेना, भगवान बहुत अच्छे हैं। परंतु भगवान कितने अच्छे हैं और भगवान कैसे अच्छे हैं इसको जानना चाहिए। गॉड इज गुड बट हाउ गुड ही इज, इसको जानना चाहिए। कैसे जानेंगे, जानने का क्या विधि है? हम बहुत सहज में तो कह देते हैं भगवान अच्छे हैं, कैसे हम समझ पाएंगे भगवान कितने अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं? गुड, शास्त्र, शास्त्र को कैसे ना, पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए, किससे, सतां प्रसंगान मम विरच संबित, संबित मतलब जानता है, जो भक्तों के साथ इस बातों को चर्चा करता है तो यही समझ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण बा भगवान राम बा भगवान के जो अनेक अवतार हैं, इन अवतारों की तत्व को कौन जानता है, भक्त जानता है, भक्त्यामा अभिजानति। और ये भक्त किस प्रकार जानता है, तत्वतः, तत्व तो जानता है अर्थात तत्वदर्शी भी, जो सत्य को अनुभव किया है, दर्शन किया है। भगवान की ऐसे जो कार्यकलाप है हम तो सामान्य जन उसको नहीं समझ पाएंगे, किंतु जब भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और मनुष्य की भांति उनको नकल करते हुए ऐसा लीला करते हैं तो इन लीलाओं को सामान्य जन सामान्य मनुष्य जैसे समझते हैं। कृष्ण एक पॉलिटिशियन है, राम एक राजा है, स्त्री कामी है, तो भगवान ऐसे सामान्य जन को भी भ्रमित करने के लिए उनका भी लीला है, है ना। नाहं प्रकाश से सर्वस्य जोग माया समाद्रिता, तो भगवान भी लीला करते हैं, इसे लोगों को भी भ्रमित करते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी है उनको वास्तविक इस लीला के रहस्य को दर्शन करने के लिए अवसर मिलता है, बस समझने के लिए अवसर मिलता है। हालांकि कभी कभी भक्त भ्रमित हो जाते हैं, महाप्रभु के ऐसे जो कार्यकलाप है, वहां भगवान कृष्ण के कार्यकलाप को अपने निजे भक्त भी ऐसे देख करके चकित हो जाते हैं। सिद्धार्थ जैसे समझता था, ये कैसे है कि ब्राह्मण बालक है अपने को कहता है भगवान विष्णु, परंतु भगवान उनके सामने प्रकट किए, प्रमाण प्रस्तुत किए। तो इसलिए जब भगवान आते हैं अपना सर्टिफिकेट भी साथ में लेके आते हैं प्रूफ करने के लिए। इसलिए सामान्य जन को लोग अब कभी कभी भगवान का अवतार समझ लेते हैं, हाँ ये भी भगवान का अवतार। तो यदि आप भगवान का अवतार कहते हो तो सर्टिफिकेट साथ में लेके आओ ना, सर्टिफिकेट के बिना किसी को प्रमाण नहीं माना जाता है। इसलिए भगवान स्वयं अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं लीलाओं के द्वारा। इसलिए माता कुंती भी स्तुति किए हैं कि जो लोग परमहंस हैं, जिनकी विवेक और विचार किसमें है, तत्व में लगी हुई है, तो ये लोग ही आपकी चरित्र को ही समझ पाते हैं और इसलिए ही भगवान प्रकट होते हैं और लीला करते हैं। तथा परमहंसानं मुनिनं अमल आत्मनं भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रिय। कि साधारण स्त्रियों की इतनी बुद्धि नहीं होती है भगवान की लीलाओं को इस प्रकार चर्चा करें, क्योंकि खाना बनाने में तो समय चल जाता है, घर के काम करने में समय चल जाता है, कहाँ तत्व विचार में उनका मन लगता है। मुनि ऋषि लोग, उनका कुछ काम धंधा नहीं है, जंगल चल के वही चर्चा करते हैं। तो माता कुंती एक सामान्य स्त्री की भांति अपने विचार को अभिव्यक्त कर रही है कि तो मैं एक सामान्य स्त्री हूँ, कैसे आपकी लीलाओं को समझ सकती हूँ। वो लोग जो परमहंस हैं, खीर वीर के विचार रखते हैं, भेद करने वाला है, अमल आत्मानम, जिनकी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, तो वो ही आपकी लीला को समझ पाते हैं। इसलिए भगवान की जो अवतार का विशेष प्रयोजन ये है कि जो अमल आत्मा है वा जो परमहंस है और जो भक्ति जो को अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान इस प्रकार लीला करते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम शिव की जय, श्री श्री राधा राधिका रमण शिव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो सामान्य मनुष्य की दशा क्या है, यदि भगवान इन लोगों के लिए ऐसे अवतार लेते हैं, बाप ने लीला को प्रस्तुत करते हैं, तो सामान्य लोगों का क्या हित होता है। कि सामान्य लोग जो इसी प्रकार कष्ट में पड़े हैं, दिन रात केवल काम में लगे हुए हैं, तो किस लिए काम में लगे हैं। तो महाराणी कुंती कह रहे हैं कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानान अविद्या काम कर्म भी। पहला है अविद्या, और अविद्या से उत्पन्न होता है काम, और काम से कर्म। तो उन लोगों के लिए, उन लोग के हित के लिए भगवान क्या करते हैं, उन लीलाओं को प्रस्तुत करके ऐसे मुनि और अमलात्मा परम भागवतम भक्तों के द्वारा इस कथा को जब चर्चा होती है, उनको श्रवण करने के लिए अवसर मिलता है। श्रवणम स्मरण अरहणादिनी, इस कथा को श्रवण करते हैं, फिर श्रवण के द्वारा स्मरण भी करते हैं और फिर उनकी आराधना करते हैं। इसलिए भगवान की इस संसार में अवतार लेने का प्रयोजन है। करिसेन एति किंचन, कोई लोग ऐसे ही मत व्यक्त करते हैं। और फिर कैसे इस मनुष्य शरीर में इस भगवान की लीलाओं को समझ करके कैसे भव सागर को हम पार कर सकते हैं, इसलिए सरल उपाय ये है भक्ति योग। और भक्ति योग का विधि क्या है, श्रृणन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिज्ञ सा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेगिते जनम् ते वपश्यन्ति अचिरेण तावका भवप्रवाहं परमं पदाम्बुजम्। इस भव संसार के जो प्रभाव है, जन्म मृत्यु के प्रभाव को रोकने के एकमात्र उपाय है भगवान की चरण कमल को आश्रय। और ये चरण कमल को हम दृढ़ता से आश्रय कर सकते हैं जब ये प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। सुनंति गायन्ति घृणन्ति स्मरन्ति अभिप्नसा, बार बार। और इन कथाओं को सामान्य जन नहीं सुनते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बड़े बड़े मुनि ऋषि उनको भी ये श्रवण करने से क्या होता है, उनकी जीवन की क्रांति और शांति प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने को बड़ा महात्मा मानता है, मंडलेश्वरी मानता है, बहुत पहुंचा हुआ मानता है, परंतु भगवान के भक्ति से मुख मोड़ लेता है और आया राम गया राम, तो इसलिए इन चरित्रों को बार बार मुहूर् मुहूर् बार बार गाया जाता है। और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को प्रशंसा करते हुए कहते हैं, महाराज ये जो तस्य अनुचरितम सीतापति भगवान सीतापति रामचंद्र की कथाओं को आप बहुत बार सुने हैं, भूरी और मुहु बार बार सुने हैं। किससे सुने हैं परीक्षित महाराज? परीक्षित महाराज अभी आसन लगा के बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए। पहले कब सुने थे? हाँ, किससे सुने थे? परीक्षित महाराज जब सम्राट थे उस समय उनके घर में कई साधु संत आते थे। उनमें से एक महान ऋषि थे मार्कंडेय ऋषि। तो जब वो आते हैं तो मार्कंडेय ऋषि भगवान रामचंद्र की कथा कहने में बहुत निपुण है। जैसे आप जानते हैं काक भुसुंडी है, हनुमान जी हैं, इस भगवान रामचंद्र की कथा में बहुत निपुण है, इस तत्व को जानने वाले हैं। अर्थात ये लीला के पीछे क्या रहस्य है उस रहस्य को समझते हैं। कते ऐसे तत्वदर्शियों से, ऐसे ऋषियों से राजन महाराज आप बहुत बार सुने हैं और भरकर के सुने हैं। श्रुतम ही वर्णितम भूरी, ये जो वर्णन है इसको आप भरकर के सुने हैं। कभी कभी आप भोजन करना भी भूल जाते हैं, इतने कथा में परीक्षित महाराज को रस मिलता, मग्न हो जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं। हम उस रस को आस्वादन न करने के कारण हम टाइम देखते हैं कब न बचेगा। परंतु परीक्षित महाराज जैसे पिपासु हैं तो इस कथा को बहुत पिए हैं, इसलिए कह रहे हैं मैं इसको संक्षेप में वर्णन करूंगा। तो यहां सुखदेव गोस्वामी ये जो कह रहे हैं कि तत्वदर्शी भी बारूसी भी इन लोगों के द्वारा जिस चरित्र को गाया जाता है वो ही रोचक होता है। ऐसे अनेक भगवान रामचंद्र के विषय अनेक रामायण है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण जो है बहुत प्रकार की है, परंतु उनमें से कुछ ही प्रभुपाद कहते कुछ ही प्रामाणिक है, क्योंकि जो लोग भगवान राम की लीला के ऊपर इस प्रकार तत्व में विवेचना किए हैं, सुधी जन साधु जन है, तो उनकी कथा ही वास्तविक रोचक होता है, क्योंकि वो हृदय पर असर डालता है। तो ऐसे बहुत सारी भगवान रामचंद्र की लीला है तो जो भ्रम में डालने वाला है। जैसे प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान रामचंद्र इस प्रकार जो लीला किए ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे एक स्त्री कामी पुरुष की कैसे दशा होती है, स्त्री के प्रति जो आसक्त रहता है उसकी कैसे दशा है। जैसे भगवान रामचंद्र वनवास के समय सीता जी के अपहरण होने के बाद भाई लक्ष्मण के साथ जंगल जंगल घूमते हुए है ना, हाय हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते, ऐसे जोर जोर प्रलाप करते हैं और वृक्ष लताओं से पूछते हैं कि आप सीता जी के संधान कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस प्रकार रामचंद्र की जो सीता जी के वियोग की भावना और उनकी प्रलाप को देख करके कोई भी व्यक्ति मोह में पड़ जाएगा। और साधारण लोग की बात क्या है, जब भगवान महादेव अपने पति पत्नी उमा के साथ जा रहे थे तो उन्होंने अखिलेश्वर कहते हुए सच्चिदानंद कहते हुए प्रणाम किए, परंतु उमा पति के इस प्रकार व्यवहार से वह चकित हो गई। अरे ऐसे कैसे हैं, लगता है कि मेरी पतिदेव के दिमाग ठीक नहीं है, ऐसे स्त्री कामी व्यक्ति प्रणाम कर रहे हैं कि सीते सीते सीते। कोई सामान्य लोग होता है, कोई न्यूज़पेपर में कोई मीडिया में देता है, पूछताछ करता है, वो तो वृक्ष से पूछ रहा है, नदियों से पूछ रहा है, पहाड़ से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है, इसका दिमाग ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को वो कह रहे हैं कि सच्चिदानंद अखिलेश्वर, भ्रम में पड़ गई है ना। और भगवान शंकर जानते हुए भी चुपचाप वहां बैठ के बरगद का पेड़ के नीचे, वो तो प्रभु की इस लीला को जानते थे, वैष्णवानंद तथा संत, वो तो प्रभु की इस लीला को स्मरण करते रहे, उनको बहुत आनंद लगा। और उमा देवी चल पड़ी है ना, कैसे है ये परीक्षा करने के लिए, और अपने को सीता जी के रूप बना ली और ऐसे मन में प्लानिंग की, अगर यदि मुझे देखकर की है ना, मैं तो सीता जी का रूप धारण किया हूं, और मुझे देखकर के पुरुष यदि कहेगा हाँ हे सीते आप कहाँ थे, मैं आपको बहुत ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढ रहा था, तब फिर पता लग जाएगा, उनका फूल खुल जाएगा। तो ऐसे सीता जी के रूप बना करके सती ने भगवान राम और लक्ष्मण की, जहां राम लक्ष्मण चल रहे थे तो उनके आगे आगे ऐसे साड़ी को ऐसे ऐसे घुमाती हुई जा रही है, कभी कभी मुख घुमाती है, परंतु भगवान रामचंद्र क्या किए, हाथ जोड़कर कहे माते आप शंकर के बिना अकेले अकेले कैसे जंगल में घूम रहे हैं, हस्बैंड को साथ में रखना है ना, अकेले अकेले नहीं है। तो इतनी सुनते ही इतनी शर्म हो गया हो, तो फिर वो समझ के अरे मैं क्या किया, स्वयं अग्नि में जाकर के छलांग मारोगे, और भागती हुई दौड़ती हुई शंकर जी के पास आने लगे। और रास्ते में जहां जहां नजर उनकी पड़ती है ना, तो वहां देखते हैं कि सीताराम लक्ष्मण सुंदर रूप में विभूषित है। और भगवान शंकर जब पूछे आ गए आप, कहते हाँ क्या किया आप, कुछ नहीं आप प्रणाम किए, मैं हरे कृष्ण नहीं बोला था, मैं थोड़ा सा क्या दूर में जाकर के उनको प्रणाम करके आ गया। तो शिव जी ने ध्यान लगाया, अच्छा अब यहां प्रणाम नहीं कर सकते थे, इतना दूर चल पड़े। तो जब भगवान शिव ध्यान लगाए तो सती के सारे करतूत उनके सारे कैमरे में है ना मेमोरी में आ गया, सब क्या क्या करके आए। तो शंकर जी उनको इतनी अपमान लगा कि मेरे प्रभु क्या सोचेंगे कि शंकर जी अपने पत्नी को ठीक से शिक्षा नहीं देते हैं क्या, ऐसे घूमती हैं। तो मैं प्रभु को बहुत बड़ा पेचित हूं, बहुत पश्चात आपके। और यही कारण था आगे कार्य की सती जी इसलिए ही प्राण त्याग की कि भगवान शिव। तो ऐसे बड़े बड़े देवता भी ना भगवान की कार्यकलाप को नहीं समझ पाते हैं, मुह्यंती जत सूरया, बड़े बड़े विद्वान सूर्य का मतलब देवता भी है, भ्रमित हो जाते हैं। न वेद कस्य भगवत चिकित्सितम् तबेह मानस्य नृणम् विडम्बनम्। क्योंकि यह मानस्य, वो सोचते हैं कि साधारण मनुष्य ऐसे ही होते हैं, यह मानस्य। इसलिए भगवत चिकित्सितम, भगवान की क्या प्रयोजन है लीला करने की, वो सामान्य जन नहीं समझ पाते हैं। इसलिए तत्व को समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कहते, देखो पिताजी के आदेश पालन करने के लिए गेरुआ पहन लिए, जटा बना लिए और वहां जाके आए, हां सीते प्रणाम करने लगे। ये होता है संन्यास का लक्षण। और पत्नी को ठीक से सुरक्षित नहीं कर पाया, धनुष बाण तो पकड़ा था लेकिन पति को चोरी कर लिया राक्षस, क्या किया था? ये भगवान है जो अपने पत्नी को नहीं बचा सकते। तो इसलिए एक ब्राह्मण भी था दक्षिण भारत में, है ना, वो रो रहा था, कहा कि मेरी माता को ये असुर रावण ने कैसे स्पर्श कर लिया, मेरी माता की शरीर जो है ना वो दिव्य है, चिन्मय है, उनको असुर कैसे स्पर्श कर सकता है। वो रो रहा था, वो सीताराम की भक्त था। और चैतन्य महाप्रभु उसकी दशा को देखे, वो बहुत दिन से केवल रो नहीं रहा था, वो कितने दिन हो गया था वो फास्टिंग रखा था, बिना खाए पिए है ना, उस प्रकार विरह में था। फिर चैतन्य महाप्रभु जब गए वो कुर्मा पुराण से वो पंक्ति देखा कि रावण ने माया सीता को हरण करके ये लीला करने के पहले भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दर्शन कर सकते हैं, और वो ही जानते हैं कि मैं किस प्रयोजन से यहां अवतार लिया। हमको पता नहीं है कि हम किस लिए यहां आए हैं, हमको तो यहां फिक्स करना पड़ता है, फिक्स योर गोल, है ना, कि आपका जीवन के लक्ष्य बनाओ, एम बनाओ। लेकिन भगवान जानते हैं, भगवान को बनाना नहीं पड़ता है, वो बनकर के आते हैं। तो फिर उन्होंने कुर्मा पुराण से दी कि देखिए कि भगवान ये लीला करने के पहले सीता जी को कहें कि देखो हम कुछ ऐसे ही लीला करने जा रहे हैं, आप कुछ समय के लिए अग्नि के आश्रय ले लीजिए, अग्निदेव। तो फिर अग्निदेव को सीता को सौंप करके आए थे, और रावण को मारने के बाद यहां तक लक्ष्मण को भी पता नहीं चला ये कैसे हुआ। जैसे भगवान कृष्ण ग्वालवाल और बछड़े बन गए थे, वो बलराम को भी पता नहीं था कौन थे। तो इसी प्रकार जो माया सीता ने लक्ष्मण को डांटने लगी, हाँ मैं समझ गया किस लिए तुम जंगल आना चाह रहे थे भाई के साथ, हाँ तुम्हारी स्त्री लंपट है ना भाव को मैं समझ गया, पढ़ गया। और लक्ष्मण को सीता जी की एक एक बात बाण जैसे लग रहा था, कैसे कर रहे, लेकिन भाई ने आदेश दिए हैं, क्या करें। देखो पति पत्नी के बीच में मामला मैंने फंसना नहीं चाहिए। यहां से रामचंद्र भी डांटने लगे, कैसे तुम सीता जी को छोड़ करके आ गए, और यहां पत्नी डांट रही है, तुम्हारा भाई संकट में पड़ा है और तुम यहीं खड़े हो। तो एक शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा की है। और कैसे प्रभु की है ना सेवा करना है, किस प्रकार भावना, वो भी लक्ष्मण जी प्रस्तुत कर रहे। तो ये बात को लक्ष्मण भी समझ नहीं पाए कि कैसे हो गया। और जब भगवान रामचंद्र रोने लगे, सचमुच लक्ष्मण में जो कह रहा था ना वही है सब। देखो मैं तुमको कहा था ना ये जंगल में अनेक राक्षस हैं, अभी क्या किया जाए। लक्ष्मण जी बहुत प्रकार समझा रहे हैं, प्रभु आप सामान्य मनुष्य की भांति ऐसे क्यों रोते हैं, आप अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते हैं, आप अपने अतुलनीय शक्ति को नहीं जानते हैं। परंतु भगवान जब लीला करते हैं तो सबको मोहग्रस्त करा देते हैं, विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। फिर सामान्य जन की क्या बात है, उनके विषय में क्या कहा जाए, ये कौन से गाय की गोबर है। तो हम कभी दावा नहीं कर सकते हैं कि हम भगवान की लीला को समझ गए हैं, भगवान के तत्व को समझ गए हैं, मुझे कोई बाकी नहीं। इसलिए सिंपलिसिटी है, यदि हम इन लीलाओं को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, विधि क्या है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्वदर्शिनम्। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ज्ञानिना और तत्वदर्शिना, तो अनेक व्यक्ति हैं शास्त्र की मर्म को जानते हैं परंतु भक्ति परायण नहीं है। इसलिए कहते तत्व के दर्शन होता है भक्ति से। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वता, जो इसी प्रकार जानता है तत्वता, कौन जानता है, भक्त्यामां अभिजानाति जाबं जच्चास्मि तत्वतः, कि तत्वतः अर्थात परम सत्य को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, सिर्फ ज्ञान से नहीं। ज्ञान परमार्थ प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए जब माता सीता है ना, रावण की निधन होने के बाद भगवान राम ने आदेश दिए, जांबवान क्यों पलकी ढो रहे हो, हनुमान सुनो, आप सीता जी को नीचे उतार दो, क्योंकि सभी जो बानर हैं, रिच्छ हैं, भालू हैं, ये माता के रूप में देखना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी समझ नहीं पाएंगे कि क्यों ऐसा क्यों की। और फिर सीता जी आने के बाद भगवान राम लक्ष्मण को कह रहे हैं क्या अभी सीता जी को ले जाए, कि रावण ने इतना दिन तक अशोक वाटिका में रखा असुरों के साथ, उनके सतीत्व का कोई ठिकाना है, प्रमाण है। लक्ष्मण जी भी चकित हो गए, तो प्रभु इस सीता को लाने के लिए कितनी बड़ा पुल बांधे, हनुमान को भेजे, वो बेचारा 100 योजन समुद्र को छलांग मार करके गया, हाँ, और बेचारा ने उजाड़ दिया, उसके पूछ में आग लगाया गया है, इतने सारे काम करने के बाद यही सीता को प्राप्त करने के लिए फिर पूछ रहे हैं उसको लेके चले, इसके सतीत्व का प्रमाण है। तब फिर भगवान अग्नि परीक्षा लिए माता सीता से, क्योंकि ये प्रयोजन में नहीं समझे थे कि मैं असली सीता को अग्नि के पास रखा हूं, और जो साधारण लोगों को मोहित करने के लिए जो माया सीता को पकड़ किया था, जो को माया समाप्रता, तो इसी प्रकार सीता जी को लेकर के जो माया सीता को ला करके जो लीला की 14 साल वनवास के बीच में, लगभग 11.5 साल तक, हाँ सॉरी मैं 2.5 साल, 2.5 साल तक जो ये लीला किए ये मोहित करने के लिए। और पिछले जो लीला था जैसे मारीचू को मारना, सुबाह मारीचू को इस प्रकार पहले तो फेंक दिए थे पानी में, सुबाह तड़का, तो इसके पीछे क्या था, मुनियों को आनंद प्रदान करना, और दंडकारण्य की ऋषियों को, हाँ, जो इतने दिन से तप रत थे, तो उनकी मन में उस भाव को उत्पन्न करना। परंतु उसके बाद जो सुपर्णखा जंगल में आई और अपना रूप इतने सुंदर बना दी, वो तो चाह कर रही थी किसको प्राप्त करने के लिए, भगवान को। लेकिन भगवान इसे अकेले प्राप्त नहीं होते, ये तो कामुकता है, ये अविद्या काम कर्म भी, ये अविद्या थी, उनकी मन में मिसकंसेप्शन थी कि मैं डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर लूं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने रंग मेथड भी पकड़ी, जो मेथड नहीं है, भक्ति तो नहीं थी, क्या थी, हाँ मुझे तो उनसे भोग करना है, भक्ति और भोग एक साथ नहीं चलता। और इतनी सुंदर रूप बना दी रामचंद्र के पास जाकर कहने लगी, देखो कि विधाता ने हम दोनों को इससे ही बना दिए हैं, मेरे समान सुंदरी और तुम्हारे समान सुंदर पुरुष, मो सम नारी तो सम पुरुष, इसे कोई नहीं है संसार में। और मैं पूरा संसार भर घूम लिया, सब जगह मैं आईडी भेजा, देखा मेरे साथ कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, तुमको देख करके थोड़ा तो भाई है ना उधर, वो अविवाहित हैं और राजकुमार हैं, है ना, उनके साथ आप मैरिज कर सकते हैं। उनका मन फंस गया उसमें, कहा हाँ वही बात सही है, देखो प्रीति एक निष्ठ नहीं है, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक है कुरुनंदन, यदि भगवान से प्रीति करना चाहते एक करो, फिर मन भटक गया, है ना, हाँ वहां भी कर ले लाभ उठा, ये कामुकता। कभी कभी हम भगवान की पूजा करते हैं फिर भी माता जी का जागरण आ गया है, चले वहां भी थोड़ा सदरे सदरे डाल दे, फूल फेंक के आ जाते हैं, पानी फेंक के आते हैं, तो ऐसी दशा है सुफल की दशा। और लक्ष्मण ने कह के देखो मैं तो उनकी सेवक हूं, तो तुम मुझसे शादी करोगे ना तुम दासी बन जाओगे, क्या फायदा है, एक मुहूर्त में क्यों अपने लाइफ बेकार करना चाहते हो, बना लो अपना कैरियर, वो राजा है, अगर यदि आप उनसे शादी करोगे ना तुम रानी बन जाओगी, बेकार बेकार क्यों टाइम खराब करके जाओ। तो फिर उन्होंने उनके पास चल पड़े, है ना, फिर कहा क्या करें, दिक्कत तो उनके सामने तो यही है, वो तो मुझे लाइक करता है, वो तो मुझे लव करता है, लेकिन पत्नी है उनके पास। तब तो फिर देखो जो राक्षसी भावना है, काम बसना है ना, वही फिर भावना में व्यक्त करते, भगवान राम को देख करके सुंदर बन गया था, लेकिन काम की भावना आया कि मुझे भोग करना है, फिर राक्षसी रूप को प्रकट करते। पर भगवान ने जस्ट इशारा किया, लक्ष्मण थोड़ा सा मरम्मत कर दो उसकी, नाक कान काट दो, और चिल्लाती हुई गई वो, अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है लंका में राजा, ऐसे दो सामान्य मनुष्य आकर के मेरे ऐसे हाल कर दिए। तो खर दूसरा और तीसरा से, है ना, इस प्रकार उसका है, उनको इंस्टिगेट किया, देखो मेरे हालत ऐसे बना दिया, तुम्हारी बहन हो ना तुम, इतने बलवान हो, क्या है तुम्हारा पुरुष का, देखो मेरी ऐसा हालत हो। और जब इनके काम सफाई हो गया 14,000 सेना के साथ, फिर रावण को जाके इन्वेस्टिगेट किया, तो काम की इसी दशा है, अपना फायदा करने के लिए ना कितनी लोगों के साथ अप्रियता उत्पन्न करता है ना, ये कल। फिर रावण को क्या कहने लगी, अरे देखो ये मेरी दशा ऐसे नहीं किया, मैं तो तुम्हारे लिए प्रस्ताव रखा था कि स्त्री मेरी भाई के लिए मैचिंग होता है, इसलिए तो मेरे इसी दशा करती, और देखो ना विश्व में तो ऐसे कोई सुंदर स्त्री नहीं है, इस प्रकार कामुकता को बढ़े। और दूसरा आप देखिए उनका भाई रावण, वो कुछ समझा भी नहीं, उन्होंने इतने काम के बस हो गया, कहता हाँ मेरी बहन तो एकदम सही इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि तत्वदर्शी है, दर्शन करके पूरा आया सत्य को, परम सत्य, और कैसे इंफॉर्मेशन दी, चाहो तुम पत्नी बना लो, ज्ञानी भी तत्वदर्शी। रावण ने शिक्षा किससे ले रहा है, जो दुष्ट चरित्र है। ये कोई कई कथाकार कहते हैं, महाराज थोड़ा दिमाग गर्म करने की पहले ना एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। तो रावण एकदम क्रोधित हो गया कि महाराज एक वरदान दीजिए मुझे, तब फिर मैं बोलूंगा। क्या वरदान चाहिए, ना अभय का वरदान, अभय दीजिए मैं फिर बोलूंगा, चलो मैं तुमको अभय दिया, बताओ क्या बताना चाहते हैं। महाराज एक बार पूछिए, आपका बहन अकेले अकेले क्यों घूम रही थी इधर, क्या कारण था उसके पास जाने का। तो फिर सुपर्णा कहती है, भैया आप नहीं जानते हैं, तुम जब इतने स्त्रियों के साथ संतुष्ट नहीं हुए तो मैं दिन रात सोच रही थी मेरे भाई का चिंता कैसे जाएगा, कैसे चिंता जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा चिंता को दूर करने के लिए ना, मैं चिंतामणि ढूंढने के लिए गया था, जिस मणि को प्राप्त करने से तुम्हारा चिंता दूर हो जाएगी। रावण ने कहा, मेरी बहनी वास्तविक है ना, बुद्धिमती है, सबके स्रोत है, स्रोतम सर्वभूतानम, जो राजा की हित चाहते हैं तो उनके बात पर फंस गए। और वो भी दृष्ट माता सीता को ही प्रेम करता था, लेकिन राम के साथ लगा। और फिर सीता को प्राप्त करने के लिए छल करने के लिए, जैसे ये भी सुंदरी स्त्री बन करके गई थी, हालांकि राक्षसी थी, तो इसी प्रकार रावण ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए नकल करके गया था। तो इसी प्रकार जो डुप्लीसिटी करता है, कभी ना भक्ति को प्राप्त कर सकता है ना भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो रावण तो भक्ति का आश्रय लिया, लेकिन किस लिए? भोग करने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति को एक इंस्ट्रूमेंट समझता है, भोग के साधन समझता है, अच्छा, तो उनके ऐसे दशा होता है। सालग्राम में जैसे सुपारी को फोड़ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते ना, सालग्राम की पूजा करता था और सालग्राम से सुपारी को तोड़ता। तो इसी प्रकार भगवान अपने लीलाओं के द्वारा अनेक तत्व है। मारीची को जब भगवान ने बाण मारे और फिर रावण जाकर के कहा, मामा जी हैंडशेक, पहले हैंडशेक किए, अच्छा फिर प्रणाम करते हैं, तो देखो यदि खल लोग किसी के पास झुकते हैं तो ये समझना चाहिए बहुत खतरा है। जब ये बाण झुक गया और बगुला जब झुक गया तो समझो किस पर आक्रमण करना है, नुकसान करना है। और मारीची ने समझ किया, ये मेरी भांजा है, कभी मामा घर के लिए प्रणाम नहीं किया, आज कुछ ना कुछ काम पड़ा है इसकी, इसलिए हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा। तो हर व्यक्ति का व्यवहार, उनकी बोली, उनकी चली, तो पहले उसको परखना चाहिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे। और मारीच ने तो समझ गया है, अगर यदि इसकी बात ना मानो तो मरना ही है, बल्कि अच्छा होगा मैं भगवान राम के हाथ में मर करके परम धाम को प्राप्त कर। तो मनुष्य इसी प्रकार विचार रखना चाहिए, जो सत्यवादी है, सत्यनिष्ठ है, धर्म पथ में चल रहा है, सांसारिक भोग के लिए है ना, जस के लिए इस प्रकार संसार में ना मर करके ना एक ऐसे कार्य करे जैसे हमारी कम से कम परम गति प्राप्त हो जाए। हमारी जी कम से कम अपना परम गति के लिए आए, लेकिन दूसरे हम देखते हैं जटाई, उन्होंने गीत होने पर भी कितने परमार्थ में उनकी मन, उनकी चेतना लीन था। उन्होंने अपने प्राण न्यछावर कर दिया माता सीता को बचाने के लिए। ऐसे भक्ति जीवन के लिए हम लोग सब लड़ रहे हैं, है ना, सब लड़ रहे हैं, परंतु इसमें हमारी सफलता है कि इस भक्ति को बचाने के लिए ना, हम यदि प्राण भी न्यछावर कर देते हैं तो प्रभु स्वयं आएंगे हमारे उद्धार के लिए। जटाई तब तक बचा था, भगवान जब आए और उसको स्वयं अपने हाथ में उसके संस्कार किए, फिर परम धाम प्रदान किए। और तीसरा हाथ देखिए, गुरु की कृपा भक्ति जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है। तो भगवान जब कहते हैं कि सभी को है ना, सबको भक्ति की पात्रता है, भक्ति के सबके अधिकारी हैं, परंतु इस अधिकार को हम कैसे प्राप्त करें? भगवान कहते हैं, मा हिं पार्थ विपाश्रित जय पेशु पाप जोनीय स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रस्ते भी जानती पराम गति। वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे? भक्तों बा गुरु के आश्रय लेने से, तत्वदर्शी गुरु के आश्रय लेने। इसके दृष्टांत है, भिल्ली होने पर भी है ना सबरी महातंग मुनि के आश्रय में जितने सो मुनि ऋषि थे तो उनकी सेवा करके हम यही कृपा प्राप्त कर लें। सेवा कृपा रूपी एक फल देता है और यही फल ही भगवान स्वयं आस्वादन करते हैं। भगवान जो कह रहे ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्तिया प्रयच्छति, तो भक्ति ही असली शक्ति है जो फल के रूप में आकर की, और ये फल साधक भोग नहीं करता है, ये फल को कौन भोग करता है? भगवान भोक्ता राम जग्ञ तपसा। वास्तविक भक्ति के फल को ही भगवान आस्वादन करते हैं। तदहं भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मा। तो सबरी को जो मातंग मुनि ने जो आशीर्वाद दिए थे, उस आशीर्वाद पर कृपा का जो फल हुआ बा जो भक्ति की फल हुआ, उसको आकर की भगवान राम आस्वादन की। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की अनेक अद्भुत अलौकिक अपराकृतिक लीला है। उनको तत्वदर्शी जो इसी प्रकार सत्य को जानते हैं, समझते हैं, तो उनकी समागम में रह करके, उनके बीच में रह करके इस लीलाओं को सुनना चाहिए। और इस लीलाओं को सुनने से क्या होता है? भव प्रवाहम परमं पदाम्बुजम्। ये संसार के जो अवगमन है, जन्म मृत्यु के जो चक्र है, उससे हम बच सकते हैं। तो इसलिए हमें इसको बार बार सुनना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसकी कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण जी की जय। संवेत भक्त वृंद की जय। हिदाय गौर हरि प्रेमानंदे।